महाबंध पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर छह नमः सीते
प्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकं महाद्रवलविख्यातं महाबन्धं नमामि।
यह श्री भगवान भूपली भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें छठवीं पुस्तक में चौथा प्रदेश बंदरी का चल रहा है और अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 35 पर 35। काल की प्ररूपना चल रही थी अपनी, यानी उत्कृष्ट का लगातार, उत्कृष्ट प्रदेश बंद का लगातार काल कितना होता है। और अभी जगन्य का प्रकरण शुरू हुआ है कल से। तो जगन्य बंद किसके होता है तो हमने देखा था सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त के होता है। तो जगन्य प्रदेश बंध का काल कितना है तो जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय बताया है। उपपाद की अपेक्षा ये जगन्य है इसलिए एक समय बताया। कल में कल हमने बात देखी थी, उत्कृष्ट में तो दो समय हो सकते हैं और वहां तो वो परिणाम योग था जो दो समय तक हो सकता है, उपपाद एक ही समय तक होता है, इसलिए यह एक समय के लिए। अब अजगन्य के लिए वो एक समय कम कर दो शुल्लक भाव में से, वो सारे अजगन्य कहलाएंगे, क्योंकि उपपाद के बाद एकांत वृद्धि वाले हो गए, फिर परिणाम वाले हो गए, वो सारे अजगन्य कहलाएंगे। अथवा कहते हैं जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण, उष्टुप का असंख्यात लोक प्रमाण है। कहते अथवा काल के लिए लिखा जगत श्रेणी के असंख्यात, जो जगन्य नहीं है वो बाकी सब अजगन्य कहलाएगा, क्योंकि पूरे योग स्थान कितने हैं उसकी अपेक्षा एक एक समय से जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग। इन्हें एक समय कम क्षुल्लक भव है तो उसका अजगन्य हुआ और उसमें उत्कृष्ट असंख्यात लोग बताया था। अथवा कह के जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण था, नहीं बादर का रहने का काल कहाँ असंख्यात लोक है, यानी वो सूक्ष्म एक केंद्रीय में रहने का काल लिया उन्होंने। असंख्यात लोग के सूक्ष्म एक केंद्रीय की काय स्थिति, योग श्रेणी वो योग स्थानों की संख्या है। क्योंकि एक बार जो तो लोग को असंख्यात गुना किया और यहाँ जगत श्रेणी का भी असंख्यात अभाव किया, बहुत डिफरेंस है उसमें।
असंख्यात लोग तो
यानी घटित कैसे किया असंख्यात लोग, ये ख्याल में नहीं आया।
असंख्यात लोग तो उसके मतलब जो है केंद्र में रहने का काल उतना ही है ना,
उन्होंने सूक्ष्म में रहने का काल विशेषात्म लिया है, परंतु वो भी घटित नहीं हो रहा है।
फिर
आगे मार्गणों में शायद घटित करके बताएं, वो बात तो ही ख्याल में आई ये बात। एक केंद्र में अलग से बताए क्या ओके समय यानी वो अन्य निगो छोड़कर अन्य कायिकों में कहो तो ठीक है
क्या?
नहीं नहीं नहीं, असंख्यात लोग की बात करें अरविंद भाई, ऐसा हो सकता है कि निगो पर्याय को छोड़कर अन्य केंद्रों में रहने का काल असंख्यात लोग, असंख्यात लोग जो लिया है ना
का प्रकरण,
क्योंकि अन्य सभी असंख्यात लोग बादर का अंतर क्यों लिया, परंतु जगन्य तो सूक्ष्म में होता है। बादर का अंतर हमने उत्कृष्ट में देखा, वहां तो घटित हुआ था, उत्कृष्ट में घटित हो जाता है। देखो उत्कृष्ट की बात निकालो, पेज नंबर है 28 पर शुरू हुआ था, उत्कृष्ट का अंतर में वहां तो अनुत्कृष्ट का काल लिया था, परंतु वहां तो संगी जीव करता है उत्कृष्ट, इसलिए उसको अनंत काल लिया था वहां पर। असंख्यात लोग और कहीं तो बात आई थी, एकेंद्रियों में आई थी शायद। देखो देखो 31 पेज पर एकेंद्रियों में जब उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की बात आई थी, निकालो जरा हम देखेंगे वहां से। हाँ 64 नंबर का पॉइंट, पेज नंबर 31, एकेंद्रियों में सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का तो 102 समय, अनुत्कृष्ट के लिए। अनुत्कृष्ट की कैसे सोचना, क्योंकि उत्कृष्ट कौन करता है तो बादर एकेंद्रिय करता है, और वो बादर एकेंद्रिय में नहीं रहते हुए सूक्ष्म में चला जाए तो इतने काल तक उसका उत्कृष्ट नहीं हो सकता, अनुत्कृष्ट ही रहता है, इसलिए उसको असंख्यात लोग कहा। वहां तो घटित हुआ, अब यहां देखना अपने पेज नंबर 34 पर जघन्य का प्रकरण चल रहा है, जघन्य और अजघन्य। एकेंद्रिय बराबर है, परंतु असंख्यात लोक लेने का जरूरी क्या थी? यानी वो लगातार अजघन्य करता रहा, यानी उसने एक बार भी जघन्य नहीं किया, ऐसा ही लेना है? तो अन्य पर्याय में चले जाने दो ना, उसने जघन्य किया ही नहीं। इन्हें खास ख्याल में नहीं है, इसलिए अथवा जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग, क्योंकि इतने तो योग स्थान है, पलट कर उस योग में आएगा इस अपेक्षा से कहा होगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। आयु कर्म के लिए जगन्य का उन्होंने जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा था, क्योंकि तृतीय वंथर्ड का पहला समय लिया था तो एक ही समय घटित होता है, और जगन्य के लिए अंतर्मूर्त लिया था। विशेषतः हमने पढ़ा था, नारकियों की बात भी पढ़ी थी, नारकियों की देख लेते हैं। नारकियों में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अब वहां पर भी उपपाद लेना योग और असंग से आया हुआ लेना, इसलिए एक ही समय घटित होगा। और जघन्य के लिए जघन्य काल एक समय कम 10,000 वर्ष, यानी वो एक उपपाद वाला छोड़कर रिमेनिंग 10,000 वर्ष के जितने समय है, और उत्कृष्ट काल 33 सागर, यानी उसने जघन्य किया ही नहीं और जघन्य ही करता रहा। आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 4 समय है। ये जहाँ लब्धि अपर्याप्त होते हैं वहीं पर वो एक समय की बात रखी है। अजगन्य प्रदेश बंद का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है, यानी उसने जगन्य किया ही नहीं, अजगन नहीं करता रहा। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों में आयु कर्म का काल जानना चाहिए। पहली पृथ्वी में जैसे हमने सामान्य नारकीय में देखा था वैसा है, दूसरी पृथ्वी में जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, यानी वहां की पृथ्वी का उपपाद का एक समय ले लेना और आगे आगे की पृथ्वी में उसका अपना अपना जो काल है उसकी अपेक्षा है। यानी जगन्य के लिए एक समय कम कर देना उपपाद वाला, और जगन्य का जगन्य काल, और अजगन्य का उत्कृष्ट काल उस नरक की जो आयु है उसको लेना। अब इसी का विशेषार्थ हम पढ़ेंगे तो और ख्याल में आ जाएगा। यानी नारकियों में ही ये विशेषार्थ लगा रहे हैं। असंगी के मरकर नरक में उत्पन्न होने के प्रथम समय में सात कर्मों का जगन्य प्रदेश बंद होता है, क्योंकि वहां जगन्य उपपाद योग होगा। क्योंकि उपपाद योग के जो वेरिएशन है उसमें से जो जगन्य करता है उसके होगा, तथा जगन्य भवस्थिति में से जो 10,000 वर्ष की है। भवस्थिति समझते हैं ना? इस एक समय के कम कर देने पर, देखो बार बार ये शब्द तो आते हैं परंतु हमने अभी जो देखा था ना शिविर में, छह प्रकार के काल अलग से बताए तो कितना क्लियर हो जाता है। जघन्य भवस्थिति में से इस एक समय के कम कर देने पर और जघन्य प्रदेश बंद का जघन्य काल प्राप्त होने से ये उक्त प्रमाण कहा है, यानी 10,000 वर्ष में से एक समय कम और इनके अजगन्य प्रदेश बंद का उत्कृष्ट काल 33 सागर है, यह स्पष्ट ही है। आयु कर्म का जगन्य प्रदेश बंध गोलमान जगन्य योग से होता है। गोलमान का दूसरा नाम घोटमान भी कहते हैं, परिणाम योग भी कहते हैं, और इसका जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय है। जगन्य की बात है। इसलिए आयु कर्म के जगन्य प्रदेश बंद का यह काल उक्त प्रमाण कहा है। यह संभव है कि आयु कर्म का अजगन्य प्रदेश बंद एक समय तक होकर दूसरे समय में भूलमान जगन्य योग के प्राप्त होने से जगन्य प्रदेश बंद होने लगे। इसीलिए इसके अजगन्य प्रदेश बंद का जगन्य काल एक समय है। ये ख्याल में आती बात, आयु कर्म के जगन्य का जगन्य काल एक समय वो समझ में आया, और जगन्य का भी जगन्य काल एक समय है। ये कैसे लिया कि जब आयु बांधना शुरू किया तब पहले समय में उसने अजगन्य किया, यानी योग उसका जगन्य नहीं था, और दूसरे समय में योग जगन्य हो तो एक समय के लिए अजगन्य किया।
दो जगन्य के रूप में भी होगा,
कैसे भी हो सकता है, क्योंकि योग के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जैसे स्थिति में लगातार कम होता है वैसे यहाँ नहीं है। और उसका उत्कृष्ट काल अंतर्मुख की तो स्पष्ट ही है। गोलमान यानी परिणाम योग, देखो यानी जहाँ हीन भी होता है अधिक भी होता है उतना भी रह सकता है, उसको कहेंगे गोलमान। पहले भव के पहले समय में जो होता है उसको कहेंगे उपपाद योग। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के एक समय पूर्व तक लगातार वृद्धि होती चली जाती है योग में, उसको कहेंगे एकांत वृद्धि योग स्थान। बाद में उसमें वृद्धि भी होती है हानि भी होती है अवस्थित भी रहता है, उसको कहेंगे घोलमान या घोटमान या परिणाम योग। आयु कर्म के काल का विचार सातों पृथ्वियों में से इसी प्रकार कर लेना चाहिए। मात्र प्रत्येक पृथ्वी में सात कर्मों के जगन्य और अजगन्य प्रदेश बंद का जो काल है उसे अपनी अपनी जगन्य और उत्कृष्ट भव स्थिति को व स्वामित्व को देखकर घटित कर लेना चाहिए। तात्पर्य है प्रत्येक पृथ्वी में इन कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल तो एक समय ही प्राप्त होता है। क्यों एक समय अश्विन भाई? उपपाद, क्योंकि वहां के जो उन नारकियों में जो उपपाद का होगा, पहले नरक में असंगी से आया हुआ है, नीचे के नरकों में तो संगी से ही आया हुआ है, संगी के योग ही करेगा, परंतु फिर भी उपपाद योग में से जघन्य योग वहां होगा, क्योंकि सर्वत्र भव ग्रहण के प्रथम समय में ही जघन्य प्रदेश बंद होता है तथा अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय कम जघन्य भवस्थिति प्रमाण प्राप्त होता है। यानी वो एक समय उपपाद वाला घटा देंगे तो अजघन्य का जघन्य काल, क्योंकि सर्वत्र जघन्य प्रदेश बंध का एक समय काल कम कर देने पर यह काल शेष बचता है और उत्कृष्ट काल सर्वत्र अपनी अपनी उत्कृष्ट भवस्थिति प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। यानी वहां उपपाद वाला कम नहीं करना, क्योंकि अजघन्य उपपाद लेना वहां पर। यहाँ प्रसंग से इस बात का स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि जिस मार्गमना में आयु कर्म का जघन्य प्रदेश बंध गोलमान जघन्य योग से होता है, वहां उसका नारकियों के समान ही काल घटित कर लेना चाहिए। कोई विशेषता न होने से पहले नरक में ही उत्पन्न होता है, पहले सामान्य नारकियों की बात है, इसलिए असंगी मरकर नरक में उत्पन्न हुआ कहेंगे। जब पहले पृथ्वी की बात करेंगे तो वहां कहेंगे सामान्य नारकियों के समान पहले पृथ्वी में ही घटित होता है, ये कहने की पद्धति है ना। आलाप कौन सा चल रहा है, किसके बारे में, किस मार्गणा में चल रही, उसकी बात है, परंतु वो असंगी तो पहले ही नरक में उत्पन्न होता है, ये नक्की है। यानी जैसे यहाँ आयु कर्म की बात बताई, जहां जहां गोलमान योग से आयु बनती है वहां वहां ये नारकियों के समान ही काल होगा। कोई विशेष यानी क्या काल होगा? जघन्य एक समय और उत्कृष्ट चार समय जघन्य का, और अजघन्य का एक समय से अंतर में आयु के लिए। तो कोई विशेषता न होने से हम आगे उसका स्पष्टीकरण नहीं करेंगे। सामान्य तिर्यंच, एकेंद्रिय, नपुसक वेदी, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयत, अचक्षु दर्शनी, भव्य अभव्य, मिथ्या दृष्टि और असंगी जीवों में ओघ के समान भंग है, इतनी विशेषता है। नपुसक वेदी जीवों में अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है। बोलो बोलो कैसे होगा? ओग में क्या देखा था? अजघन्य का देखो, अजघन्य का जघन्य काल कितना देखा था? एक समय कम क्षुल्लक भोग रहा, तो अभी नपुसक वेदी में अजघन्य घटित करा। जघन्य तो वही होगा सूक्ष्म निगोद वाले के, बाकी जो है वो सब अजघन्य है, तो अजघन्य का जघन्य काल एक समय घटित कर दो, नहीं आता। श्रेणी उतरते समय नपुसक वेद के रहते हुए एक समय तक उसने अजघन्य किया, और फिर मरकर पुरुष वेदी हो गया है। मुझे लगता है वही होगा। आगे लिखा है क्या? उपशम श्रेणी उतरते हुए एक समय तक नपुसक वेदी रहकर मर गया। तो पुरुष वेदी हो जाएगा। इसलिए वहां एक समय के थे विशेषार्थ। यहाँ पर जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनमें ओग के समान काल घटित हो जाने से वो ओग के समान कहाँ है? मात्र नपुसक वेद का उपशम श्रेणी में जगन्य काल एक समय भी बन जाता है। अतः इसमें सात कर्मों के और जगन्य प्रदेश बंद का जगन्य काल एक समय कहा है। और वह सात कर्म बंद रहे श्रेणी उतरते समय जहाँ वेद का उदय हो रहा है वहाँ सात कर्मों का बंद है। पंचेन्द्रिय तीर्यंचो में
नपुसक वेद भी वहाँ पे पुरुष वेद का बंद कर रहा है।
क्या क्या क्या
यहाँ पे बंद पुरुष वेद का
यहाँ वेद की बात नहीं है मोहनी की बात है। मूल प्रकृति की बात चल रही है। संज्वलन और वेद मिलकर जो कुछ समय प्रबद्ध है पूरा मोहनी का हिस्सा मोहनी में जाएगा कि नहीं जाएगा। आपका प्रश्न क्या है? पुरुष वेद का बंद कर रहे हैं आगे प्रश्न क्या है?
दे एक समय के लिए उसके बंद किया उधर गया तो उसका तो बंद तो चालू रहेगा ना।
नपुसक वेदी मार्गणा है।
अच्छा,
वो उसका वेद बदल जाएगा ना
मार्गणा
उसके पुरुष वेद का उदय चालू हो जाएगा। मैंने वो समय दृष्टि रहेगा पुरुष वेद ही बांधता रहेगा परंतु उसकी मार्गणा जो नपुसक वेदी की थी वो बदलकर पुरुष वेदी की हो
जाएगी।
श्रीवेदी में भी घटित होगा ना परंतु श्रीवेदी को क्यों नहीं लिया? क्योंकि श्रीवेदी को उसके समान नहीं कहा था। यहाँ लिस्ट में जो मार्गणाएं बताई है जो ओके समान बताई है उसमें क्या डिफरेंस है उसकी चर्चा। क्योंकि श्रीवेदी में ये बात घटित नहीं होगी वहाँ सूक्ष्म निवत पर्याप्त वो तो बातें है ही नहीं वहाँ पर पर्याप्त की। अब पंचेन्द्रिय तीर्यंचो में एक निर्कित ओके समान बता दिया इसलिए यहाँ डायरेक्ट पंचेन्द्रिय तीर्यंच लिया। नारकियों के बाद सामान्य तीर्यंच जो है वो ओके समान में लिया था एकेंद्र भी उसके समान लिया इसलिए नारकी उनकी प्ररूप न होने के बाद हमेशा हम तीर्यंच की करते हैं तो तीर्यंच में पहले सामान्य तीर्यंच लेते हैं वो ओके समान हुआ इसलिए अभी पंचेन्द्रिय तीर्यंच लिए। तो पंचेन्द्रिय इंद्रिय मार्गणा नहीं ये गति मार्गणा की अपेक्षा बात चल रही है। इंद्रिय मार्गणा होती तो पंचेन्द्रिय कहते केवल गति मार्गणा में तीर्यंच गति की बात है। तो पंचेन्द्रिय तीर्यंचों में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है वहीं पर उपाधि योग लेना जघन्य वाला और जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भव ग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है यानी उसकी कायस्थ के लेना है। और जघन्य काल जब हम देखते हैं तो उसकी जो भवस्थिति है जघन्य भवस्थिति में से एक समय कम कर देना। आयु कर्म का भंग ओघ के समान है।
उपपाद
बताए थे ना पंचेन्द्रिय तीर्यंच में वो असंग से आए हुए का उपपाद लेना है और जगन्य में जगन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भव रहना है उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्ले लेना है। अब आयु कर्म का भंग ओघ के समान है मैंने पंचेन्द्रिय तीर्यंच ये जनरल बात ली ओघ के समान में क्या लेना जगन्य का काल
जगन्य का एक समय से
हाँ तो एक समय होगा क्षुद्र भाव के पंचेंद्रिय तिर्यंच कहने से अपर्याप्त भी आ गए उसके अंदर, तो लब्धि अपर्याप्त की अपेक्षा एक समय और रजोगुण का अंतर्मुख। फोर पेज देखो, आयु की बात है। आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का काल जघन्य और उत्कृष्ट एक समय बताए, क्योंकि तीसरे यानी वन थर्ड जो है तृतीय त्रिभाग उसका पहला समय ले, जहां गोलबाण योग से आयु बनती है वहां चार समय तक ले सकते हैं। यहाँ पंचेंद्रिय तिर्यंच कहने से वो अपर्याप्त को भी उसकी अपेक्षा लेनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी को अलग लिया, उनमें सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। ये तो असंगी से आए हुए इसमें ले सकते उपपाद में। अच्छा अच्छा, असंगी पंचेंद्रिय को ही लेना है, आए हुए की बात नहीं है। पंचेंद्रिय कहने से असंगी पंचेंद्रिय ही लेना है, यानी असंगी अपर्याप्त लेना। असंगी लब्धि अपर्याप्त का पहला, यानी असंगी पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त का पहला समय। आयु कर्म में भी वो लब्धि अपर्याप्त की अपेक्षा लगा लेना। हम आए हुए कह रहे हैं ना, वो बात नहीं है, असंगी में ही है वो। परंतु अभी वो पर्याप्त और योनिनी वाले जीव लिए हैं, तो उनकी अपेक्षा जो उपोपाद का जघन्य योग होगा उसको लेना। ख्याल में आई बात ये? सात कर्मों का जघन्य पहले समय में लेना, जहां उपपाद योग जघन्य होता है। इन्हें एकांत वृद्धि योग से और परिणाम योग से उपपाद योग बहुत कम होता है, उनमें भी जो रेंज है जघन्य से उत्कृष्ट तक। इसलिए यहां असंगी जीव लेना उपपाद का पहला समय। इसलिए जघन्य का जघन्य और उत्कृष्ट का लेख समय हो। अब अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि जो पर्याप्त जीव है उनकी अंतर्मूर्त तो आयु होगी ही, और उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्व अधिक तीन पल्य है। देखो पंचेंद्रिय तिर्यंचों में हमने देखा था पूर्व कोटि पृथक तो अधिक तीन पल्य, वहां 95 प्लस तीन पल्य। जब हम कहेंगे पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त तो 47 प्लस तीन पल्य, और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी संगी असंगी दोनों को लेंगे तो 15 पूर्व कोटि और तीन पल्य। आगे बढ़े। आयु कर्म का भंग सामान्य नारकियों के समान है। अब ये पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव है, योनिनी भी पर्याप्त जीव है, आयु कर्म का बंध गोलमान योग में होगा, तो गोलमान योग में जघन्य एक समय और उत्कृष्ट चार समय जघन्य का। तो यहाँ कहते हैं सामान्य नारकियों के समान है, यानी जघन्य का एक समय से चार समय और अजघन्य का एक समय भी घटित हो सकता है और अंतर्मूर्त अधिक से अधिक। तो आयु कर्म का अंग सामान्य अर्थ के समान है। पंचेंद्रिय तिर्यांच्या पर्याप्त करून सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंद का जघन्य और उत्कृष्ट का लेखन है वही उपपाद वाला अजघन्य प्रदेश बंद का जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भोग ग्रहण और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है क्योंकि पंचेंद्रिय तीर्यं च पर्याप्त के मार्ग में चल रहे लगातार उसमें जन्म लेंगे तो भी अंतर्मुख से अधिक नहीं होगा। आयु कर्म का भंग ओग के समान है ये लब्धि अपर्याप्त है। तृतीय त्रिभाग का एक समय आयु कर्म के जघन्य का एक समय अजघन्य तो अंतर्मुख होगा। इसी प्रकार त्रस और स्थावर सब अपर्याप्तकों के जानना चाहिए। जैसे पंचेंद्रिय तीर्यं च अपर्याप्तकों में लिया कि सात कर्मों का जघन्य पर्व का पहला समय लेना उपपाद और आयु और उत्कृष्ट में अंतर्मुहूर्त लेना। आयु के लिए भी वन थर्ड का पहला समय यानी एक समय और अजघन्य का अंतर्मुहूर्त विशेषार्थ पंचेंद्रिय तीर्यंच और इनके अपर्याप्तकों में आयु कर्म का जघन्य प्रदेश बंद ओग के समान क्षुल्लक भाव के तीसरे त्रिभाग के प्रथम समय में होता है इसलिए इसका भंग ओग के समान कहा। तथा शेष दो प्रकार के पंचेंद्रिय तीर्यंचों में यानी ये पर्याप्त वाले जीव आयु कर्म का जघन्य प्रदेश बंद नारकियों के समान घोलमान जघन्य योग से होता है इसलिए वहाँ इसका भंग सामान्य नारकियों के समान कहा है शेष कथन सुगम। मनुष्य त्रिक में पंचेंद्रिय तीर्यंचों के समान भंग है इतनी विशेषता है कि सात कर्मों के अजघन्य प्रदेश बंद का जघन्य काल एक समय है श्रेणी की अपेक्षा क्योंकि बंद ही नहीं हो रहा था बंद शुरू हुआ तो एक समय तक बंद करके सात कर्मों की बात है ना। देवों में नारकियों के समान भंग है इसी प्रकार सब देवों की अपनी अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति कहनी चाहिए। विशेषता मनुष्य त्रिक में अन्य सब काल पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक के समान है यह स्पष्ट ही है केवल सात कर्मों के अजघन्य प्रदेश बंद के जघन्य काल में फर्क है। बात यह कि मनुष्य त्रिक में उपशम श्रेणी की प्राप्ति संभव है और उपशम श्रेणी में इनके सात कर्मों का अजघन्य प्रदेश बंद एक समय तक भी हो सकता है क्योंकि जो उत्तम मनुष्य उपशम श्रेणी से उतरते समय एक समय तक सात कर्मों का बंद कर दूसरे समय में मरकर देह हो जाता है उसके इनका एक समय के लिए अजघन्य प्रदेश बंद देखा जाता है। देवों में अन्य सब काल जिस प्रकार नारकियों के घटित करके बतलाए हैं उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए मात्र अजघन्य प्रदेश बंद का काल अपनी अपनी जघन्य और उत्कृष्ट भव स्थिति को ध्यान में रखकर कहना चाहिए। उनमें भी जो जघन्य है वो उपपाद में लेना बाकी सब जैसे हमने नारकी में देखा। एकेंद्रियों में और सूक्ष्म जीवों में आठ कर्मों का भंग ओग के समान है बादरों में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंद का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है मैंने पादर अपर्याप्त लेना नहीं उपपाद वाला। पादर अपर्याप्त का उपपाद ले सकते हो अजघन्य प्रदेश बंद का जघन्य काल एक समय का क्षुल्लक भव ग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण है ये उसकी कार्य स्थिति गई। अभी बादरों की बात चल रही है। आयु कर्म का भंग ओग के समान है, क्योंकि वो बादर अपर्याप्त वंथड़ के पहले समय में करेगा। बादर पर्याप्त को में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य उत्कृष्ट काल एक समय उनमें उपपाद मिलेगा। अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय कम अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल संख्या हजार वर्ष है, यानी उनमें रहने का काय स्थिति। आयु कर्म का भंग सामान्य नारकियों के समान है, क्योंकि पर्याप्त जीव है तो गोलमान में होगा, तो एक समय से चार समय और एक समय से अंत में। इसी प्रकार बादर वनस्पति का एक और बादर वनस्पति का एक पर्याप्त जीवन में जानना चाहिए। सब सूक्ष्म पर्याप्त जीवन पर्याप्त जीव सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का काल ओग के समान है, यानी उनके उपपाद योग का जघन्य दिन। अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय कम अंतर्मूर्त है, क्योंकि उसकी अंतर्मूर्त प्रमाण आयु है। एक समय उपपाद वाला कम कर दिया तो एक समय कम अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। आयु कर्म का भंग नारकियों के समान है, क्योंकि ये बादर वनस्पति वगैरह चल रही है नहीं, सूक्ष्म की बात है ना, सूक्ष्म है परंतु पर्याप्त है। पर्याप्त होने से वो एक समय से चार समय। विशेषण, यहाँ एकेंद्रीय और सूक्ष्म जीवों में सात कर्मों के जघन्य और अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल ओगिक समान प्राप्त होने से वह उसके समान कहा है। बादरों में सात कर्मों का जघन्य प्रदेश बंध ओग के प्रथम समय में होता है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा तथा इस एक समय की क्षुल्लक भव में से इस एक समय को क्षुल्लक भव में से कम कर देने पर अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भोग ग्रहण प्रमाण प्राप्त होने से वह उक्त प्रमाण कहा है। और बादरों की काय स्थिति अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण होने से सात कर्मों के अजगन्य प्रदेश बंध का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। इनसे आयु कर्म का जगन्य प्रदेश बंध ओग के समान क्षुल्लक भोग ग्रहण करके तृतीय त्रिभाग के प्रथम समय में होता है, इसलिए इसका भंग ओह के समान का, यानी वो एक समय तक ही जघन्य। बादर पर्याप्तकों में भी सात कर्मों का जघन्य प्रदेश बंधन बहु के प्रथम समय में होता है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है तथा इस एक समय को प्राप्त कर देने पर कम कर देने पर इस एक समय को कम कर देने पर अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय कम अंतर्मूर्त का है। ये बात ख्याल में आ रही, अंतर्मूर्त तक प्रदेश बंध होता है उसका आयु का। आयु की बात नहीं, सात कर्मों की बात। एक समय उपपाद वाला लिया और छोटी आयु में से वो एक समय कम कर दिया, क्योंकि बादर पर्याप्त कहे हैं उसमें अंतर्मूर्त की आयु है, एक समय के लिए उन्होंने उपपाद योग लिया तो रिमेनिंग अंतर्मूर्त प्रमाण उसका जघन्य काल हो जाएगा। और इनकी काय स्थिति संख्या हजार वर्ष प्रमाण होने से अजघन्य प्रदेश बंध का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण है, क्योंकि उसी पर्याय में रहा, उसी को यहाँ काय स्थिति कहते हैं। आयु कर्म का जघन्य प्रदेश बंध नारकियों के समान गोलमान जघन्य योग से होने के कारण यह इसका बंधन नारकियों के समान कहा है। मैंने जो पर्याप्त जीवन में एक समय से चार समय तक जगन्य होगा और जगन्य एक समय से अंतर्मुख होगा, अब बादर वनस्पति का एक और बादर वनस्पति का एक पर्याप्त जीवन का भंग। बादर एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय पर्याप्त कों के समान होने से यह भंग उक्त प्रमाण कहा है। सब सूक्ष्म पर्याप्त जीवों में सात कर्मों का जगन्य प्रदेश बंध ओघ के समान प्राप्त होने से इसका कार ओघ के समान कहा है। क्या कहते हैं? सूक्ष्म पर्याप्त है। सात कर्मों का जगन्य प्रदेश बंध कब होगा? उनका उपपाद में एक समय तक जगन्य होगा, इसलिए ओघ के समान बताए। और इस एक समय को उनकी छोटी आयु जो अंतर्मूर्ति है उसमें से कम कर देने पर यहाँ अजगन्य प्रदेश बंध का जगन्य काल एक समय कम अंतर्मूर्ति प्रमाण प्राप्त होने से वो उक्त प्रमाण कहा है। और इनकी काय स्थिति अंतर्मूल प्रमाण होने से, क्योंकि लगातार सूक्ष्म पर्याप्त रहा तो अंतर्मूर्त तक ही रहता है, इसलिए अंतर्मूर्त तक रहने से यहाँ पर जगन्य प्रदेश बंध का जगन्य काल एक समय कम अंतर्मूर्त प्रमाण प्राप्त होने से उक्त प्रमाण। और काय स्थिति भी अंतर्मूर्त ही है, इसलिए अजगन्य प्रदेश बंध का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त प्रमाण कहा है। अब विकलेंद्रियों में यहाँ पर भी विकलेंद्रियों के जो अपर्याप्त है उनका उपपाद वाला लेना, तो सात कर्मों के जगन्य प्रदेश बंध का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है और अजगन्य प्रदेश बंध का जगन्य काल एक समय है। एक समय कम क्षुल्लभ, फिर से सात कर्मों के जगन्य का एक समय लिया हमने जगन्य और उत्कृष्ट भी, और अजगन्य का जगन्य काल एक समय कम क्षुल्लभ। और इनके पर्याप्तकों में, इनके पर्याप्त नहीं है तो हो गई बात उनकी। अभी विकलेंद्रिय पर्याप्त ही उन्होंने बता दिया तो वहां अपर्याप्त वाली मार्गणा नहीं सोचनी। तो पर्याप्तकों में जगन्य प्रदेश बंध का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, वहां उनकी अपेक्षा जो उपपाद वाला होगा उसको यहाँ एक समय के लिए लेना। अजगन्य प्रदेश बंध का जगन्य काल अंतर्मूर्त, क्योंकि उनकी जो एक भव है उनका अंतर्मूल प्रमाण उसमें से वो एक समय कम कर देना है। ये अजगन्य प्रदेश बंध का जगन्य काल अंतर्मूल और उत्कृष्ट काल दोनों में संख्यात हजार वर्ष प्रमाण है। वो जगन्य का जगन्य तो एक समय के लिए होगा तथा इन दोनों में आयु कर्म का भंग पंचेंद्रिय तिर्यंच द्विक के समान है। अभी इसका विशेषार्थ पढ़ेंगे। विकलेंद्रिय और उनके पर्याप्तकों में भवग्रहण के पहले समय में सात कर्मों का जगन्य प्रदेश बंध होता है, इसलिए उसका जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। वो उपपाद योग एक समय के लिए होता है तथा इस एक समय को अपनी अपनी जगन्य भव स्थिति में से कम कर देने पर जगन्य भव स्थिति ने एक आयु इनके अजगन्य प्रदेश बंध का जगन्य काल होता है, इसलिए वह एक समय कम क्षुद्र क्षुल्लक भव ग्रहण प्रमाण है और एक समय कम अंतर्मूर्त प्रमाण का है। इन्हें विकलेंद्रियों में और पर्याप्तकों में ये दो बातें बताएं कि उसको एक साथ विशेषार्थ में बता रहे हैं, इसलिए अपर्याप्तम की अपेक्षा एक समय कम क्षुल्लक भव और पर्याप्तकों की अपेक्षा एक समय कम अंतर्मुख, क्योंकि पर्याप्तकों की वो जघन्य आयु होगी तथा इन दोनों की काय स्थिति संख्यात हजार वर्ष प्रमाण होने से अने विकलित्रय कहो या विकलित्रय पर्याप्त कहो काय स्थिति अने उस पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष प्रमाण होने से। देखो जब भवस्थिति कहेंगे तो भवस्थिति में उसको जघन्य भी कहेंगे और उत्कृष्ट भी कहेंगे, दोनों लिमिट बतानी पड़ेगी। और जब काय स्थिति कहेंगे तो उसमें उत्कृष्ट ही लेना है, क्योंकि जघन्य कहने से एक भव ही हो सकता है, वो जघन्य भवस्थिति में आ जाती है बात। तो काय स्थिति में हमेशा उस पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल लेना। ये छह प्रकार के काल हमने सबसे याद करवा लिए थे ना, रोज एक बार बता देते हैं। तो इन दोनों की काय स्थिति संख्यात हजार वर्ष प्रमाण होने से इनके अजघन्य प्रदेश बंध का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है, ये बात ख्याल में आई? यानी वो लगातार अजघन्य ही करता रहा, उपवास भी किया तो उसने अजघन्य ही किया। आयु कर्म के जघन्य और अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल स्वामित्व को देखते हुए विकलेन्द्रियों में पंचेन्द्रिय तीर्यंचों के समान, यानी उसमें अपर्याप्त की आयु लेना, अपर्याप्त का लेना है तो उसमें वन थर्ड का एक समय लेना, और विकलेन्द्रिय पर्याप्तकों में पंचेन्द्रिय तीर्यंच पर्याप्तकों के समान, यानी वो भोलमान आयु वाली लेगी एक समय से चार साल, और अजगन्य का एक समय से अंतर हो, ये उनके समान कहा है। अब ख्याल में ना एक कैसे डिराइव करना, यानी यही रूल हर मार्गणा में चले। ये जो अनुभाग में तो हमें सोचना था कि यानी अभी उत्तर प्रकृति में प्रशस्त है कि अप्रशस्त है कि क्या है, यहाँ तो बस प्रदेश बंध में केवल योग से संबंध है। पंचेंद्रिय और त्रस्य जीवों में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। जब हम सामान्य से कहे तो उनके अपर्याप्त जीवों का उपपाद लेना, हाँ, और वो भी हम कहेंगे तो असंगी से पंचेंद्रिय में असंगी को लेना और त्रस में द्विंद्रिय अपर्याप्त को लेना, स्वामित्व में हमने देख लिया। अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भव, पंचेन्द्रिय में उसका क्षुल्लक भव लेना, त्रसों में उनका कोई भी उसका समान का समान है, द्विंद्रिय का ले लो या अन्य त्रसों का ले लो, और उत्कृष्ट काल का भंग अनुत्कृष्ट के समान है, यानी अजघन्य का उत्कृष्ट काल, यानी उनकी जो काय स्थिति लेना है। यानी पंचेंद्रियों की काय स्थिति कितनी देखी थी हमने, हजार सागर में पूर्व कोटि पृथक को लिए थे कि नहीं, हाँ, प्लस हजार सागर और त्रस में, हाँ, 2000 सागर प्लस पूर्व कोटि पृथक केवल त्रस कहने से। उत्कृष्ट काल का भंग अनुत्कृष्ट के समान है, यहाँ तक हमने पढ़ा। पर्याप्त जीव में यानी पंचेंद्रिय पर्याप्त और त्रस पर्याप्त, सात कर्मों के अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। यानी असंगी से उसमें आए हुए जीव लेना है, उपपाद काल लेना, त्रस के लिए एक इंद्रिय में से आए हुए लेना या त्रस की ही बात लेना, वहां पर उपोपात का जगन्य एक समय होता है। हमें तो यहाँ केवल काल देखना है, स्वामी तो हमने देख लिया। तो अजगन्य के लिए जगन्य उत्कृष्ट काल एक समय है, अजगन्य प्रदेश बंद का जगन्य काल अंतर्मूर्त है, ये उनकी आयु छोटी आयु। और उत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल का भंग अनुत्कृष्ट के समान। नहीं नहीं जगन्य चाहिए, मैं पढ़ते समय मैंने जगन्य बोल दिया परंतु वहाँ लिखा है अजगन्य, जगन्य चाहिए क्योंकि शुरुआत में जगन्य बताते हैं ना। तो जगन्य प्रदेश बंद का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, और अजगन्य प्रदेश बंद का जगन्य काल अंतर्मूर्त है, उनकी एक आयु लेना छोटी, बहुत सिकी लेनी है। और उत्कृष्ट काल का भंग अनुत्कृष्ट के समान है, यानी यहाँ उनकी काय स्थिति लेना पर्याप्त में। वो पूर्व कोटि वाली बात निकाल देना। आयु कर्म का भंग पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान है, यानी आयु में जब पंचेंद्रियों में लेंगे तो अपर्याप्त में वो एक समय वाली लेना और अजगन्य के लिए अंतर्मुख लेना। अब जब पर्याप्तों में गठित करना है तो एक से चार समय लेना और अजगन्य के लिए एक समय से अंतर्मुख लेना। विशेषा इन जीवों के भी भव ग्रहण के प्रथम समय में सात कर्मों का जगन्य प्रदेश बंद होता है। इसलिए इसका जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है, तथा इस एक समय को जगन्य भव स्थिति में से कम कर देने पर इनके अजगन्य प्रदेश बंद का जगन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भव ग्रहण प्रमाण प्राप्त होने से यह उक्त प्रमाण कहा है, तथा इसका उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट प्रदेश बंद के अनुत्कृष्ट के समान है यह स्पष्ट ही है। इसी प्रकार इनके पर्याप्तकों में काल गठित कर लेना चाहिए, शेष कथन सुगम, हमने ऊपर गठित करके देखा। अब कायिकों में देखेंगे, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, निगोद जीव, फिर सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म जल कायिक, सूक्ष्म अग्नि कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक, सूक्ष्म वनस्पति कायिक, सूक्ष्म निगोद जीवों में सात कर्मों के जगन्य प्रदेश बंद का जगन्य उत्कृष्ट काल एक समय है, ये उपपाद वाला लेना। जिस किसी पर्याय में लेना है उसका अपना जगन्य उसी समय उपपाद के समय, यानी एक समय घटित होता है। और अजगन्य प्रदेश बंद का जगन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भव ग्रहण प्रमाण होता है। और उत्कृष्ट काल जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। अब यहाँ असंख्यात लोग नहीं कहा, और जगन्य का उत्कृष्ट काल जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण है, यानी हाँ वहाँ असंख्यात लोग लिया था अथवा कहकर हाँ वो डाउटफुल लगा था, वहाँ उन्होंने उसका विशेषाक में लिखा है वो सूक्ष्म में रहने का काल इतना है, ऐसी उन्होंने बात की थी, परंतु ओके अपेक्षा उसकी बात कहाँ घटित होती है। और जगन्य तो किसी भी पर्याय में रह सकता है, बाकी कोई नहीं करेगा जगन्य, वही एक सूक्ष्म निगोद का उपपाद वाला जगन्य, इसलिए बाकी जो योग स्थान है उसकी संख्या लेना जगत श्रेणी की असंख्या। बराबर है ना, सूक्ष्म में भी कोई जीव जगन नहीं करेगा, वही तो बात है।
तो वो क्या सूक्ष्म में से निकल गया और असल का जो प्रमाण चलता है दूसरी दरिया में जाकर वापस तभी उसका जगन होगा, इसे बता रहे असंख्या लोक प्रमाण काल तक वो सूक्ष्म में जाएंगे कैसे ले सकते। क्योंकि अदरवाइज तो श्रेणी
का वही लेना पड़ेगा ना। सूक्ष्म निगोद पर्याय का अंतर कितना है, अन्य कायिकों का जो है वही लेना पड़ेगा। वो अन्य कायिक मैंने वही बात बताई थी ना, अन्य कायिकों में रहने का काल असंख्यात लोक है, बाद में इस कायिक में जाएगा ही वो। अब इसमें भी देखो पृथ्वी कायिक की अपेक्षा है, परंतु पृथ्वी कायिक में रहते हुए जगन्य का एक समय कम सुलभ और उत्कृष्ट काल जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग क्रमांक यानी भले वो असंख्यात लोक तक पृथ्वी कायिक रहा, फिर भी जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग क्रमांक काल में काल तक वो अजगन्य करेगा यानी लौट कर फिर जगन्य करेगा ही, यही अर्थ होता है ना इसका। फिर से पृथ्वी कायिक में लगातार रहने का काल कितना है, तो असंख्यात लोक। अब यहाँ उसके लिए क्या लिखा उन्होंने, ये सभी मार्गणाओं के लिए अपने अपने अजगन्य प्रदेश बंद का जगन्य काल तो एक समय कम शुल्लक भाव ग्रहण और उत्कृष्ट काल जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण है।
तो सूक्ष्म में रहते हुए जगत श्रेणी के असंख्यात भाग काल जाने पर उसका होगा ही।
हाँ ये एक है। कौन सा वो असंख्यात लोक ना, वो बात यहाँ नहीं ली है, वो तो केवल सूक्ष्म वो के लिए ली।
मैंने
ओ में ऐसा हम ले सकते हैं ना, भले वो निगोद में वो दाई पुद्गल परिवर्तन रहे फिर भी
असंख्यात
नहीं, असंख्यात लोग के बाद वो सूक्ष्म निगोद में आएगा ये भी घाट, अथवा कह के जगत श्रेणी का असंख्यात बन गया, दो मत लिए ना वहाँ
पर।
हाँ असंख्यात लोग दोनों के लिए लिया, और यहाँ तो जगह एक ही विकल्प लिया कि श्रेणी का असंख्यात है। आयु कर्म का भंग ओह के समान है, यानी जब उनके एक समय ही बात घटित होगी जघन्य के लिए, अजघन्य के लिए वो एक समय कम करके अंतर्मुख। अब ये सभी सूक्ष्म में और सामान्य में लिए उनके कायिकों में। अब कहते इनके बादरों में, बादर कहा पर्याप्त ही ऐसा नहीं कहा, इनके बादरों में सात कर्मों के जगन्य प्रदेश बंध का जगन्य उत्कृष्ट काल एक समय है, ये उपपाद वाला लेना है। ये बादर अपर्याप्त में लेना पड़ेगा और अजगन्य प्रदेश बंध का जगन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भव ग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण है, यानी बादर कायिकों की स्थिति कर्मस्थिति प्रमाण यानी सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर। समझ में थी, इनके बादर यानी बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक, बादर अग्नि का एक, बादर वायु का एक, बादर वनस्पति का एक। यहाँ निगोद को निगोद भी वही होता है, बादर लिया ना, सूक्ष्म निगोद मिलकर ढाई पुद्गल परावर्तन है। हाँ बादर, हाँ बादर निगोद की बात अलग से बताएंगे, यहाँ तो बादर वनस्पति का ही कितना लिया, वो बादर वनस्पति का ही कहने से उसमें प्रत्येक दिया है, बादर वनस्पति का ही कहने से सूक्ष्म बादर निगोद दिया है, बादर प्रत्येक दिया है। कर्मसिद्धि प्रमाण पढ़ा ना हमने, उसके आगे पढ़ेंगे, ख्याल में आ रही बात? देखो फिर पढ़ते बादर, इनके बादरों में ने बादर पृथ्वी का एक, बादर अग्नि का एक, बादर जल का एक, अलग अलग में हाँ। सात कर्मों का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय वो उपपाद की अपेक्षा लिया, उनके भी बादर अपर्याप्तों में लेना, और जघन्य का एक समय कम क्षुल्लक भव ग्रहण प्रमाण लेना, और इन सात कर्मों का और जगन्य का उत्कृष्ट काल तो कहते कर्मस्थिति प्रमाण लेना, उनके पर्याप्तकों में, यानी बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर जल का एक पर्याप्त, सात कर्मों के जगन्य प्रदेश बंध का, जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय, इनमें भी उपपाधि लेना है भले वो पर्याप्त जीव है, जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, पर्याप्त होने से वो शुल्लक हो यहां नहीं लेना, और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष, आयु कर्म का भंग तिर्यंचों के समान है, पर्याप्तकों में आयु कर्म का भंग लेना है ना, क्या बादरों में लेना है, ऊपर ऊपर आयु की बात नहीं की थी,
दोनों
अलग अलग, हाँ, अलग अलग लेना, जब बादरों में आयु कर्म लेंगे तो बादरों के अपर्याप्तों में जघन्य का एक समय और जघन्य का, अब जब पर्याप्तों में लेना है आयु कर्म का तो गोलमान योग में बंध होगा एक से चार समय, और अजघन्य के लिए एक समय से अंतर्मुख। अब बादर प्रत्येक वनस्पति का एक जीव का भंग बादर पृथ्वी का एक जीव के समान है, जैसे हमने पहले अभी देख लिया था, सभी के बादर एक साथ लिए थे हमने, विशेषतः काल का खुलासा पहले जिस प्रकार कर आए हैं उसे ध्यान में रखकर यहाँ भी कर लेना चाहिए, मात्र बादर पर्याप्त निगोदों का उत्कृष्ट काल अंतर्मुख जानना चाहिए, हाँ हाँ उसमें अलग है, क्या लिखा है किसका, बादर पर्याप्त निगोद है, अकेले बादर निगोद लेंगे तो असंख्यात लोग उसका भी नहीं, वो सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर उसका भी होगा ना, कर्मस्थिति तो उसके लिए भी लिया था, उसमें बादर निगोद लिखा है कि बादर निगोद पर्याप्त, बादर निगोद का कितने लिखा है, पर बादर पर्याप्त निगोद का ही अलग है, बादर निगोद का अलग है, दो मार्गना अलग है ना, पर्याप्त निगोद वनस्पति साधारण क्षुद्र और ढाई पद, हाँ निगोद में ढाई पद बढ़ता है, सामान्य में संख्या सहस्र वर्ष, पर्याप्त का एक वो अंतर्मुख का है,
नहीं लगातार पर्याप्त नहीं था, बादल पर्याप्त
साधारण पर्याप्त कर लिया, बादल पर्याप्त कहाँ गया?
साधारण पर्याप्त
साधारण में पर्याप्त कहेंगे तो सूक्ष्म भी आए और बादल
भी आए तो संकेत को
किसका? अकेले सूक्ष्म में पर्याप्त, पर्याप्त का असंख्यात लोग बादर में रहा, निगोद बादर में रहा, कभी सूक्ष्म कभी
बादर,
निगोद बादर पर्याप्त यह अलग है। देखो अभी वनस्पति का एक साधारण लिया, सामान्य लिया, पर्याप्त लिया, लब्धि पर्याप्त लिया, निगोद बादर सामान्य, निगोद बादर पर्याप्त संख्या सहस्र वर्ष लिखते सूक्ष्म साधारण पर्याप्त। हाँ, सूक्ष्म साधारण पर्याप्त में अंतर्मुत लिया मैंने, सूक्ष्म निगोद पर्याप्त में, सूक्ष्म बादल पर्याप्त में तो संख्या सहस्र वर्ष में संख्या सहस्र वर्ष ही लिखा है।
तो यहाँ पे अंतर्भूत होता है वो
ये विशेषात में लिखा है, मूल में नहीं लिखा है। मात्र बादर पर्याप्त निगम का उत्कृष्ट का अंतर्मुख जानना चाहिए। अभी इसमें क्वेश्चन मार्क लगा नहीं क्या? पूरी संख्या 1000 वर्ष आगे पढ़ेंगे, मिला ये अभी आगे लिखेंगे। पांच मनोयोगी और पांच वचन योगी जीवों में, अभी मनोयोग कहो या वचन योग कहो, पर्याप्त तो जीव है ये। और उपपात के काल में ना मनोयोग होता है ना वचन योग होता है, मैंने उसके गोलमान ही हो गए उसके। तो आठों कर्मों को लिया वहाँ पर, आठ कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल 1 समय और उत्कृष्ट काल 4 समय। ये बात ख्याल में आई? आयु भी और अन्य भी, क्योंकि गोलमान योग है, ये जघन्य की बात हो गई। अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल 1 समय, दो जघन्य के बीच में हो सकता है, और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि एक तो योग ही अंतर्मुहूर्त तक होते हैं। आयु के बंध की बात करेंगे वो भी अंतर्मुहूर्त तक ही बनती है। ख्याल में ये बात है? देखो योग है तो योग जब चालू हो जाता है मनोयोग या वचन योग तो गोलमान योग भी है उनका। अब काय योगी जो में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल 1 समय है, ये जब काय योगी कहेंगे तो पहला भव का पहला समय में घटित होगा। और काय योगी में सबसे जघन्य वो सूक्ष्म निगोद की बात है, वो भी होगा। और काय योग के रहते हुए अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल 1 समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। काय योग के रहते हुए
कायोग था और पलट गया,
पलट गया।
समय
काय योग ऐसा नहीं लेना एक समय।
देखो देखो
आपने जैसे कहा कि श्रेणी से उतरते समय ऑलरेडी काय योगी था
तो योग
मैंने पहले वो बंद नहीं था
हाँ।
फिर बंद कर रहा था
एक समय बंद करके योग
पलट गया। जब बंद चालू हुआ तब तो उसका अन्य योग चालू हो गया यानी सात कर्मों का जघन्य वो तो उपोपाद में घटित होता है और आयु कर्म के जघन्य का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। आयु कर्म का
आयु कर्म का तो एक समय
लब्ध पर्याप्त और अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है हमेशा लेते हैं उत्कृष्ट काल अंतर मुक्त। श्रेणी की बात आपने
यहाँ पे आयु कर्म में अजघन का एक समय कैसे होगा
क्या क्या
आयु कर्म में
हाँ
अजघन प्रदेश का जघन्य काल एक समय कैसे होगा।
देखो देखो आयु कर्म का जघन्य प्रदेश बंध कब घटित कर रहे हैं
हम
काय योगी में लब्धि पर्याप्त की
अपेक्षा
बराबर और अजघन्य जो है
का
ऐसे ले लो ना कि आयु कर्म का अजगन्य बांध रहा है
अच्छा और योग पलट
और योग पलट गया
एक समय में योग पलट गया
काय योग से अन्य वचन योग वगैरह चालू हो गया
बांधना चालू से काय योग से
योग पलट गया उसकी अपेक्षा आयु कर्म की भी बात हो गई विशेषार्थ यहाँ पर पांच मनोयोगी और पांच वचन योगी जीव में आठ कर्मों का जघन्य प्रदेश बंध गोलमान जघन्य योग से होता है अतः इनके जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय ये हमने पहले देखा तथा इन योगों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त होने से ऊपर हमने देखा था ना और जघन्य का भी एक समय और अंतर्मुहूर्त बताया एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त होने से यह आठों कर्मों के अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त का अब काय योग में क्योंकि बाकी पलट कर काय योग में आते हैं एक समय में जिसका जो व्याघात वगैरह कहते हैं काय योग में सात कर्मों का जघन्य प्रदेश बंध सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त जीव के भोग के प्रथम समय में ही संभव है इसलिए इनके जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है तथा जिसके मरण के समय काय योग हुआ है और जो दूसरे समय में जो सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त होकर जघन्य योग से सात कर्मों का जघन्य प्रदेश बंध करने लगा है यानी यह मरण के समय काय योग हुआ उसने अजघन्य किया और दूसरे समय में सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त होकर जघन्य कर्म बंध किया उसके काय योग में एक समय तक सात कर्मों का अजघन्य प्रदेश होता है। बंद होता है, इसलिए इसका जगन्यकाल एक समय कहा है और इसका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है यह स्पष्ट ही है। मैंने श्रेणी की बात कर रहे थे, वो बात नहीं है यहाँ पर। मरण के समय का योग हुआ और वो उसने जगन्य किया।
नहीं,
ये आपने जो कायोग में श्रेणी योग पलटा श्रेणी में वो नहीं, योग नहीं, योग उसके मरण के समय में कायोग हुआ एक समय तक, फिर मरकर सूक्ष्म निगोद में जन्मा तो वहाँ उसने जगन्य किया। कायोग का कायोग रहा
श्रेणी में बंधन तो प्रतीत किया, वो नहीं कर सकता है।
श्रेणी में पहले छह कर्मों का था, आपको सात कर्मों का अजगण्य कहना है ना, ठीक है, उत्कृष्ट को भी हम अजगण्य कहेंगे। हाँ।
एक समय में
उसके ग्यारहवें में का योग चल रहा था।
हाँ। और दसवें में आया,
दसवें में आया एक समय तक योग उसका कायोग रहा,
फिर पड़
गया, घटित हो जाएगा। इन्हें मरण की अपेक्षा या श्रेणी की अपेक्षा, आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे दूसरा ही, दूसरा कुछ पूछा आपने? हाँ, वो आगे लिखा है। देखो काय योग में अभी जो हम पढ़ने हैं 40 पेज पर सेकंड लाइन, काय योग में एक समय तक सात कर्मों का अजगण्य प्रदेश बंद होता है, वही लेना है उसका योग पलटने की अपेक्षा, इसलिए इसका जगन्य काल एक समय कहा और इसका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है यह स्पष्ट ही है। मैंने एक इंद्रिय में रहते हुए काय योग लगातार है परंतु अजगण्य का इतना ही काल। शेष कथन सुगम। अब औदारिक कायोगी जीवन में अब उपपाद योग नहीं होगा, उसका उदारिक का योग रहते हुए सात कर्मों के जगन्य प्रदेश बंद का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। इन्हें वो परिणाम योग वाला ही जगन्य लेना पड़ेगा ना, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने का समय लेना पहला समय, उपपाद नहीं लेंगे उसको, एकांत अनुरुद्धि का पहला समय लेंगे। क्या कहते हैं
औदारिक कार्य की बात
है,
औदारिक कार्य तो पर्याप्त हो गया, औदारिक
औदारिक कार्य शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर होगा ना।
तो वहाँ पे तो परिणाम योग,
परिणाम योग का पहला समय।
तो वहाँ पे जगन्य तो कहाँ पे भी हो सकता है ना,
जगन्य कहाँ नहीं होगा, वहीं पर
परिणाम योग में
इतना जगन्य वो पहले समय में होगा। जगन्य और उत्कृष्ट एक समय क्यों लिया फिर,
औदारिक तो कहाँ पे भी हो सकता है जगन्य योग,
कहाँ पर भी हो सकता है, पर यहाँ वाला जगन्य सबसे जगन्य होगा।
अच्छा, पर्याप्त होने के कक्षा का है
ना। देखो आप स्वामी तो निकालो, और वो भी सूक्ष्म निगल लग गया पर्याप्त कोण में। अच्छा नहीं, वहां लेना पड़ेगा उसको, तृतीय त्रिभाग का पहला समय औदारिक का योग लब्धि पर्याप्त कोण में, लब्धि पर्याप्त कोण में तो
मिश्र का योग
मिश्र ही रहेगा, 25 पेज पर्याप्त तो होने वाले उनको लेना पड़ेगा, देख लेते। 25 पेज औदारिक कायोगी में हाँ सूक्ष्म निगो दिया लिए। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने का ही समय लिया ना उन्होंने,
पर्याप्ति के पहले
हाँ पर्याप्ति का प्रथम समय। वहीं से उसको पर्याप्त कह देते हैं। अब अजगन्य का एक मिनट, अजगन्य प्रदेश बंद का जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष है। देखो अजगंध कैसे लेंगे हम, इंद्रियादि जीव है
औदारिक काल योग में रहने का
उत्कृष्ट का प्रश्न नहीं है, अजगंध का जगन्य काल मैंने कोई इंद्रियादि जीव है औदारिक काल योग में है एक समय के लिए औदारिक का युग में रहा मर कर अन्यत्र गया तो औदारिक मिश्र होगा या कारमा होगा।
औदारिक प्रदेश बंद का जगन्य काल, अरे अजगन्य प्रदेश बंद का जगन्य काल एक समय
बोलो
प्रथम समय में होगा ना,
कौन सा प्रथम
सूक्ष्म विद्या व्यक्ति प्रथा नहीं सूक्ष्म व्यक्ति को जाकर पहले समय का
वो बात है वो अजगन्य काल है
नहीं नहीं औदारिक अच्छा औदारिक
और वहाँ औदारिक का योग कहाँ है पर वहाँ औदारिक मिश्र है वो सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त
नहीं नहीं पर्याप्ति पूर्ण होने पर एक समय के लिए जगन होगा
हाँ
और अजगन का उत्कृष्ट काल कुछ कम बाइक से जाए
उत्कृष्ट काल की बात ही नहीं है हम अजगन के जगन्य काल की चर्चा कर रहे हैं
वो तो हमने देखा था पर्याप्ति पूर्ण होने पर एक समय पर पहले
वो जगन्य है वो जगन्य का एक समय आप बीच का एक वाक्य छोड़ रहे अजगन्य प्रदेश बंद के जगन्य काल की चर्चा चल रही है क्योंकि औदारिक कायोग का जगन्य काल एक समय हो सकता है कि नहीं हो सकता है द्विंद्रियादि किसी भी पर्याय में नहीं मन या वचन योग से वो औदारिक कायोग में आ गया और एक समय में मर गया तो मरने के बाद उसका औदारिक का योग नहीं रहा कारमान हो जाएगा औदारिक निश्चय हो जाएगा जो कुछ हो रहा है यानी वो एक समय मरण की अपेक्षा है देखो ना अजगन्य प्रदेश बंद का जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष का मान है अब ये पृथ्वी का एक में लेना वो कुछ कम इसलिए लिया कि उसका अंतर मुहूर्त तक औदारिक मिश्र करना औदारिक मिश्र का आयोग था इसलिए उसको छोड़ना। आयु कर्म का भंग नारकियों के समान है अब औदारिक का योगी है तो ये पर्याप्त जीव लेना है तो जगन्य के लिए 1 से 4 समय वह जगन्य के एक समय से लेकर अंतर्मुख औदारिक मिश्र का योगी जीवों में अपर्याप्तकों के समान भंग है यानी 7 कर्मों का एक समय होगा उपोपाद की अपेक्षा होगा वही निगोद में लगा लेंगे हम और अजगन्य के लिए अजगन्य प्रदेश बंद का जगन्य काल 3 समय कम क्षुल्लक भोग रहा कर्मण का युग में रहने का, सूक्ष्म निगम जो है, क्योंकि औदारिक मिश्र का ये काल है, क्षुद्र वो माइनस कर्मण का युग की तीन समय। कर्मण का युग चलेगा, यह का अपने विषय का युग पता ना, विशेषता क्या बताई, अजगन्य प्रदेश बंद का अजगन्य काल तीन समय कम शुल्लक भोगरण प्रमाण, आयु में वही वन थर्ड वाली बात कहेंगे अविशेषा। सूक्ष्म निगो जीव के पर्याप्त होने के प्रथम समय में जघन्य योग से सात क्रमों का जघन्य प्रदेश बंद होता है, तथा औदारिक का युग में इनके जघन्य प्रदेश बंद का जघन्य उत्कृष्ट काल एक समय कहा है, तथा औदारिक का युग का जघन्य काल एक समय ये मरण की अपेक्षा भी देखा हमने, और उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष है, इसलिए इसमें सात क्रमों के अजघन्य प्रदेश बंद का जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष प्रमाण कहा है। यहाँ आयु कर्म का जघन्य प्रदेश बंद नारकियों के समान घोलमान जघन्य योग से होता है, इसलिए यहाँ इसका भंग नारकियों के समान कहा है। अपर्याप्तकों में प्रारंभ के तीन समय कर्मण योग के हो सकते हैं, अतः उनसे न्यून शेष समय में औदारिक मिश्र का युग नियम से रहता है, इसलिए औदारिक मिश्र का युग में सात कर्मों के अजघन्य प्रदेश बंद का जघन्य काल तीन समय कम क्षुल्लक वो ग्रहण प्रमाण कहा है। इसमें शेष भंग पर्याप्तकों के समान है, यह स्पष्ट ही है। यह
जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवानी मस्तक सदा